भगवान के दो काम है, असहायों की सहायता करना और दुशासन जैसे दुष्टों को दंड देना। पहले और दूसरे दोनों काम एक दूसरे से संबद्ध हैं। असहायों की सहायता करने का मतलब ही है उन्हें सताने वालों को दंडित करना। इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्य शुक्ल ने लोक रक्षा की स्थिति लोक रंजन के पूर्व मानी है। लोक रक्षा के बिना लोक रंजन का जो रूप खड़ा किया जाता है वह पूर्ण नहीं होता। मीरा की रचनाओं का क्षेत्र बहुत सीमित है। तुलसी क्या, कबीर और सूर की अपेक्षा भी मीरा का रचना संसार सीमित है, किंतु वह किसी की अपेक्षा कम विश्वसनीय नहीं। इसका कारण यह है कि मीरा ने नारी जीवन के वास्तविक अनुभवों को शब्दबद्ध किया। इस वास्तविकता में जो परस्पर विरोधिता या विषमता है वह भी मीरा के यहाँ भरपूर मौजूद है। रचनाधर्मिता की प्रक्रिया ही ऐसी है कि उसमें विषमता या परस्पर विरोधी तत्व चित्रण में स्वतः सिमट आते हैं। कोई अपनी वास्तविक स्थिति निश्चल ढंग से व्यक्त करे तो उसमें सामाजिकता अपने आप खिंच जाएगी, क्योंकि व्यक्ति की स्थिति भी विशिष्ट सामाजिक स्थितियों या संदर्भों का परिणाम है। निराला ने सरोज स्मृति अपनी बेटी पर लिखी। वह एक पिता की अपनी कन्या की अकाल मृत्यु पर लिखी गई आत्मकथात्मक रचना है, किंतु सरोज स्मृति में निराला जैसे लाखों करोड़ों पिताओं और सरोज जैसी लाखों करोड़ों कन्याओं की पीड़ा भी अभिव्यक्त है। इसी तरह मीरा ने जब अपनी व्यथा कही तब उन्होंने सिर्फ अपनी ही व्यथा नहीं कही, अपने युग के असंख्य नारियों की, दुखी जनों की व्यथा कही। एक दुख दूसरे दुख से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। मीरा की व्यथा नारी व्यथा थी। वह भक्त थी, अज्ञात प्रीतम की साधना करती थी, लेकिन वह घर में ही बैठकर साधना करने वाली नहीं थी। वह जब भक्त हो गई तब अपने आप को भक्त मानती थी, स्त्री या पुरुष नहीं। यहीं से उनके संघर्ष का प्रस्थान समझिए। भक्ति अपने आप में व्यक्ति साधना थी। कोई नारी होकर भी नारीत्व से निरपेक्ष हो जाए सांसारिक दृष्टि से, लेकिन समाज से नारी मानने से इनकार नहीं करने लगेगा। मीरा नारीत्व के बंधन को त्याग कर बाहर आना चाहती थी। समाज की रूढ़ियां उन्हें भक्त मानकर व्यक्तिगत साधना के लिए शायद न रोकती, लेकिन राणा कुल की सामंती मर्यादा तोड़ने के द्वारा की आज्ञा उन्हें समाज नहीं दे सकता था। वह भक्ति भावना और सामाजिक रूढ़ियों का द्वंद्व था। यह द्वंद्व तीव्र इसलिए था क्योंकि मीरा जैसा व्यक्तित्व भावना को जीवन आचरण में भी उतारना चाहता था। मीरा नारीत्व से मुक्त होकर भक्त ही रहना चाहती थी। कहते हैं कि वृंदावन के गोस्वामी जी को यह कहकर उन्होंने हतप्रभ कर दिया था कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, कृष्ण। गोस्वामी अपने को पुरुष कैसे मानते, लेकिन यह केवल भावना की बात थी। समाज जब उनके नारीत्व को लेकर प्रवाद करता होगा, तरह तरह की बातें करता होगा, कुटिल साधु जैसे लोग भी मिलते ही रहे होंगे, तब मीरा को नारी होने की अनिवार्यता का बोध होता होगा। भावना जगत में त्यागा हुआ अवलात्व फिर आता होगा और वह इस अवलात्व से युक्त होकर उस भगवान की शरण में दोबारा मर्माहत हो जाती होंगी जो अशरण शरण है। हरि मारो सुनज्यो अरज महाराज, मैं बला बल नाही गुसाई राखो अब का इलाज। इन हरि गिरधर नागर गिरधर गोपाल का जो रूप है वह राणा एवं अन्य दुर्जनों से कहीं अधिक शक्तिशाली रूप है, जिसकी शरण में जाकर मीराबाई इस विषमता से मुक्त हो जाती है। वह गिरधर नागर की चाकर हैं, दासी हैं, वह खड़ी खड़ी उनसे अरज करती हैं। गिरधर नागर ऐसे शक्तिमान हैं जो जगत के ताप से, राणा के कोप से, दुर्जनों की हंसी से उन्हें मुक्त दिलाते हैं। यह उनका निषेधात्मक रूप है। उनका घनात्मक या विधेयात्मक रूप और अधिक महत्वपूर्ण है। वह रक्षक भी है और रंजक भी, वह प्रियतम भी है। उनकी छवि देखकर मीरा निहाल हो जाती है। गिरधर नागर शक्तिशील सौंदर्य से समन्वित मीरा कैसे प्रियतम है जो इस जगत में उन्हें नहीं मिले। वह मीरा के स्वप्न है। ये आदर्श पति, प्रियतम, प्रेमी, रक्षक, रंजक एवं जीवन जगत में नहीं मिले, इसीलिए वह पूर्व जन्म के प्रिय हैं, जन्म जन्मांतर के हैं। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे पूरब जड़म का साथी। ये प्रियतम मीरा को स्वप्न में मिलते हैं। नींदण यावाड़ा सारा रात, कूड़ विधि होए प्रभात, चमक उड़े सुपना लख सजड़ी, साधुड़ा भूल्या जात, माए माड़े सुपना माँ परणया दीनानाथ। यह मीरा के हृदय में ही स्थित है। जिस हृदय में सारा ताप है, द्वंद है, रोग है, उसी में गिरधर नागर रोगों को दूर करने वाला वैद्य भी है। स्थिति द्वंद्वात्मक है, रोग और वैद्य दोनों साथ साथ हैं। जागट विरहा सुई लखी है, कई कोई हरिजन माने हो, रोगी अंतर वैद बसत है, वैद्य ही ओखद जाने हो। स्वप्न के अलावा यह प्रिय मीरा के हृदय में है। जिस हृदय ने सारा द्वंद और ताप झेला है, उसने शामक और दुखी जीवन को सुखी करने वाले प्रियतम का रूप निर्माण भी किया है। मीरा भाव जगत में उस प्रियतम से मिलती है। यह भाव मिलन सारे भौतिक दुख द्वंद को सार्थक और सिरस्कर बना देते हैं, विष को अमृत बना देता है। यह अमृत यूं ही नहीं मिलता, यह संघर्ष का अमृत है। यह शायद सच्चे ताप और द्वंद की मांग, अनिवार्यता और पहचान है। जैनेन्द्र ने महादेव वर्मा के विषय में निहायत ठीक बात लिखी है कि सच्चा घाव घाव की पीड़ा से मुक्ति चाहता है। दुख की पहचान यह है कि वह दुख से छुटकारा चाहता है, दुख से लिप्त रहना चाहे तो समझिए कि दुख में कोई खोट है। दुख आत्मीय यानी अनुभूति नहीं है। बड़े कवि जो द्वंद्व विषमता का चित्रण करते हैं, वे उस द्वंद्व से मुक्त जीवन का स्वप्न अवश्य दिखा देते हैं। यह द्वंद्व ही अनुभूति की प्रामाणिकता है। तुलसी जैसा द्वंद्व कम कवियों ने अनुभव किया होगा। उन्होंने कलयुग को चीर कर रामराज्य का स्वप्न दिखाया। महान कबीर ने काल के भास को अकाल पुरुष की कालतीतता, जहां सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, काल नहीं, स्थिति से युक्त किया। कहते हैं कि शेक्सपियर की त्रासदी रचनाएं नई व्यवस्था के संकेत से समाप्त होती हैं। मीरा का यह स्वप्न प्रिय के मिलन का रूप धारण किए है। इस मिलन स्थान का प्रतीक वृंदावन है। वहां सब कुछ सुखद है, सारी वांछित स्थितियां उदित हैं और कुंज कुंज में सांवरा घूमता है मुरली का शब्द सुनाता हुआ। आले माड़े लागा वृंदावन नीका, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी का, निर्मल नीर बहिया जमणा माँ भोजन दूध दही का, रतन सिंहासन आप विराज्या मुगट धारिया तुलसी का, कुंजन कुंजन फिरिया सांवरा सपद सुड़िया मुरली का, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिड़ा नर फीका। यह वृंदावन भक्ति की दृष्टि से कृष्ण की केली स्थली तीर्थ है तो है ही, मीरा का हृदय भी है। यही प्रसाद का वृंदावन है। इसके लिए उन्होंने कामना प्रकट की है, ज्वालाओं से दग्ध यह जगत वृंदावन बन जाए। इस वृंदावन में मीरा का गिरधर नागर से मिलन होता है। राजस्थान की रहने वाली मीरा को वर्षा बहुत प्रिय मालूम होती है। उनके मिलन की आशा के साथ ही वर्षा का रूपक बदलने लगता है। जैसे रेगिस्तान में वर्षा ताप को शांत कर देती है, वैसे ही मीरा का जागतिक ताप दूर होने के लिए वर्षा का रूपक बदलने लगता है। मीरा ने होली बारहमासा भी लिखे हैं, लेकिन प्रिय से मिलने की भावना के साथ उनकी कविता में वर्षा सहज रूप से आ जाती है। वस्तुतः वर्षा उनकी मिलन सुखद अनुभूति का काव्य बिंब है। ऐसी पंक्तियों में वर्षा स्पर्श वर्ण गति ध्वनि सबसे युक्त होकर झंकृता नायिका बन जाती है। झंकृति नाद योजना की रे सांवलिया मारे आज रंगीली गणछौर छय जी, काली पीली बदली में बिजली चमके मेघा घटा घनघोर है छय जी, दादुर मोर पपीहा बोले कोयल कर रही सौर छजय जी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरणा में मारो जोर छय जी। लगता है जैसे मीरा सारे लोग उपवाद की ध्वनियों को चुनौती दे देकर इन सुखद ध्वनियों की जंकृति को शब्दायित कर रही हैं। आत्मीयता, संवादात्मकता और विश्वास छय जी से प्रकट होता है। यह ध्वनि वर्ण रस स्पर्श सब मौजूद है और अंत में मीरा की यह घोषणा चरणा में मारो जोर छय जी। लोगों ने समझ क्या रखा है, ताप के श्रवण और परम तोष की यह एक ऐन्द्रिक अभिव्यक्ति है। बदला रेथे जल भरिया आजियो, झरझर बूंदा वर्षा आली कोयल शब्द सुनाजियो, गांजा बांजा पवन मधुरियो अंबर बदरा छाजियो, सेज सांवरिया पियघर आस्या सखिया मंगल गासियो, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी भाग भलिया जड़ प्यासो। यह भाव मिलन की अनुभूति अपने आप ऐन्द्रिक बिंबों में व्यक्त हो गई है। यह सर्वांग तोष का चित्र है। भक्ति से प्राप्त तोष भी व्यक्त होने के लिए उन्हीं बिंबों में उतरा है। जिनका सहारा राजकुमार चौधरी या कृष्णा शौक्ति ने लिया है। बरसात हुई, जल भराया और सूरजमुखी अंधेरे में कहीं न कहीं शारीरिकता और अशारीरिकता यानी भाव सत्य से जुड़ जाता है। शारीरिक अनुभूति जिस प्रकार तीव्र सघन होकर अशारीरिक बनती है, उसी प्रकार भाव जगत की तीव्र अनुभूति भी सघन होकर शारीरिकता में पर्यवसित होती है, लेकिन इससे ज़्यादा समानता ढूंढना अनर्थक है। मीरा के यहाँ संयम की जो जलती हुई आग है वह वर्षा बनी है। राजकुमार चौधरी और कृष्णा शोभती में वह अभाव निष्ठा और आग से रहित है। यह शरीर की आग है, वर्षा बाहर की है। मीरा के यहाँ शरीर की आग नहीं, भाव निष्ठा और संयम की आग है, और वर्षा बाहर से नहीं आई, संयम निष्ठा से उत्पन्न हुई है। संयम और निष्ठा की आग ने ही वर्षा का रूपक ले लिया है। यह प्रसंग न चाहते हुए भी अनेक कारणों से विवश होकर उठाना पड़ा। संयम और निष्ठा की इस शक्ति का स्रोत भक्ति है। इस भक्ति और आस्था के अभाव से संयम की शक्ति नहीं मिल सकती। इस आस्था और संयम को प्राप्त करने के लिए आधुनिक लेखकों को अपने समय के प्रभावी ऐतिहासिक विचारधारा से जुड़ना होगा। कविता और जीवन का संबंध जरूर होता है, किंतु यह संबंध सब समय सीधा सरल नहीं होता कि रचनाकार के जीवन और उसकी कला में यांत्रिक तौर पर तालमेल बिठाया ही जा सके। अंतःकरण की गति बाह्य इंद्रियों की गति से बहुत तेज और भिन्न है। उसमें ऐसा बहुत कुछ होता रहता है जो कभी भी नहीं प्रकट होता। जो प्रकट नहीं होता उसका भी प्रकट चेष्टाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः मीरा के जीवन और मीरा के काव्य में परस्पर सर्वत्र संबंध नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जीवन और रचना का संबंध नहीं होता या ऐसा संबंध ढूंढना निरर्थक है। कुछ पाश्चात्य आलोचकों ने और उनकी देखा देखी हिंदी के भी कुछ आलोचकों ने ऐसे प्रयत्नों को निरर्थक या हास्यास्पद तक समझा है, लेकिन हिंदी साहित्य पर विचार करें तो भक्तिकालीन कवियों, छायावादी कवियों और प्रगतिशील कवियों की रचनाओं का उनके जीवन संघर्ष से गहरा संबंध अवश्य प्रकट होता है। यह संबंध सर्वत्र नहीं स्थापित हो पाता, इसे फिर से कहने की जरूरत नहीं। इस संबंध स्थापन में बहुत सतर्कता की जरूरत है। भक्त कवियों की रचनाओं से उनके सिद्धांत और जीवन का तालमेल बिठाने में थोड़ा बहुत सुविधा इसलिए होती है कि वे अपनी आस्था को कविता से बड़ा मानते थे। वे कथ्य को वाणी से अधिक महत्व देते थे। जहाँ अवसर मिलता था अपने विषय में भी दो टूक बातें करते थे। उन्होंने कविता में अपने विचारों को जीवन जगत संबंधी अपनी प्रतिक्रियाओं को सीधे तौर पर अभिव्यक्त किया है। मीरा ने प्रभुत मात्रा में रचना नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विषय में पर्याप्त लिखा है। उनकी रचनाओं में उनके बाह्यांतर संघर्ष का पता चलता है। उनके विषय में बाह्य साक्ष्य, प्रामाणिक अर्ध प्रामाणिक किंवदंतियाँ वार्ताएँ मिलती हैं। उनमें उनकी रचना सुसंबद्ध मालूम पड़ती है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। वह आधुनिक आलोचक नहीं थे। उनका उद्देश्य भक्तिन मीरा के जीवन का एक ही छप्पा में परिचय देना था। उन्हें मीरा की कविता से कोई खास सरोकार नहीं था। नाभादास ने मीराबाई के विषय में लिखा, सदृश गोपी का प्रेम प्रकट कली जुगही दिखायो, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दुष्ट निदोष विचारी मृत्यु के उद्यम कियो, मारण बाको भयो गरल अमृत ज्यो पियो, भक्ति निशान बजाय कहे काहुते नाहिन लजी, लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। मीरा की मृत्यु का दुष्टों ने उद्यम किया, इन्हें विष देने का प्रयत्न किया। उन्होंने कलयुग में गोपिकाओं जैसा प्रेम प्रकट किया। वे निरंकुश निडर थी। लोकलज्जा कुल की श्रृंखला उन्होंने तोड़ी। यह सब नाभादास ने लिखा। यह उनके जीवन का परिचय है। यह सब उनकी कविता में है कि नहीं? इस लोकलाज कुल श्रृंखला तोड़ने की विशेषता को नाभादास ने रेखांकित किया है। उसी पदावली से मीरा की रचनाएं भरी हैं। कितनी पंक्तियों मीरा ने लोकलाज तजी नाची की उक्ति दोहराई है। मीरा के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं के बारे में एक बात और उल्लेखनीय है। मीरा को उनके जीवन काल में उच्च व मध्य वर्ग संरक्षणशील रूढ़िग्रस्त समाज में बहुत आदर की दृष्टि से नहीं देखा गया था। उन्हें कड़वे बोल सहने पड़े थे। पंडित परशुराम चतुर्वेदी की सूचना का उल्लेख किया जा चुका है कि उस समय ही नहीं, आज भी ऐसे लोग हैं जो मीरा के प्रति आदर की भावना नहीं रखते। उस समय क्या हालत रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। दूसरी ओर ऐसा भी वर्ग है जो बहुत साक्षर नहीं, लगभग अनपढ़ ही होगा, लेकिन उन अवर्णों में मीरा की रचनाएं परंपरा से लोकप्रिय रही हैं। ये लोग भी राजस्थान के ही हैं। डॉक्टर पद्मावती शबनम ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेरा व्यक्तित्व और कृतित्व में लिखा है कि लोक साहित्य विद्यालय किरनार से प्राप्त सूचना के अनुसार मीरा के पद अधिकांशतः भील एवं निम्न वर्ग से ही प्राप्त होते हैं। भीलों और निम्न वर्ग में मीराबाई की रचना इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? राणा कुल की बहु मीरा ने रैदास या रैदासी परंपरा के किसी चमार संत को अपना गुरु क्यों बनाया? इसका संबंध भक्ति आंदोलन की मूल मानवीय भावना से, जो धर्म के सहारे अभिव्यक्त हो रही थी, और इस मानवीयता का संबंध मीरा की रचनाओं से है कि नहीं? मध्यकाल की राणा कुल की कोई स्त्री निरंकुश अति निडर होकर लोकलाज कुल श्रृंखला तज दे चमार को अपना गुरु बनाए, लेकिन कविता करने बैठो तो इसका कोई प्रभाव उसकी रचनाओं पर न पड़े, ऐसा वही मानेंगे जो कविता को जादू समझते हैं, जिससे जीवन की सारी समस्याएं कलम हाथ में लेते ही छूमंतर हो जाती। भक्त कवियों को सगुण निर्गुण की धाराओं में बांटने का रिवाज है, इसलिए मीराबाई के विषय में भी ऐसी जिज्ञासा की जाती है। कहते हैं कि वह रैदास की शिष्या थी। श्री वियोगी हरि के अनुसार मीराबाई के सिद्ध गुरु जीव गोस्वामी थे। मीरा की कविताओं से उनके संप्रदाय का पता चल पाना दुष्कर है। संभव है कि उन्होंने किसी को गुरु बनाया भी हो तो उसका निश्चित पता नहीं चलता। संभवतः वे अनेक महापुरुषों से प्रभावित हुए। वे सुनकर या केवल सिद्धांत से प्रभावित होने के बजाय अपनी आँखों और अपने हृदय पर अधिक विश्वास करती थी। इसीलिए उनकी कविताओं में सांप्रदायिकता या संकीर्णता नहीं। उनकी रचनाओं पर निर्गुण सगुण सूफी मत नाथ पंथ सबका प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदी में शायद कोई और रचनाकार मिले जो इस क्षेत्र में मीरा से अधिक उदार हो। कबीर पर सगुण मतवाद का प्रभाव नहीं, क्योंकि वे भगवान की लीलामय रूप का वर्णन नहीं करते। लगता है कि जैसे मीरा किसी धार्मिक संप्रदाय में दीक्षित न हो। मुझे लगता है कि 84 वैष्णव की वार्ता में मीराबाई और रामदास पुरोहित के जिस झगड़े का उल्लेख है वह यही संकेतित करता है कि मीरा किसी संप्रदाय विशेष से ही बदकर नहीं रह सकती थी। मीरा की रचना देखकर लगता है कि उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के मतवादों को ध्यान में न रखकर अनुभूति पर ही बल दिया है। मीरा ने किसी मतवाद पर आक्रमण भी नहीं किया। सूरदास तक ने निर्गुण मतवाद पर गोपियों द्वारा आक्रमण करवाया है। इस प्रकार मीरा की रचनाओं में सभी मतवादों का प्रभाव है। वे निर्गुण ब्रह्म की सगुण ब्रह्म की उपासना करती हैं, योगी को संबोधित करती हैं, काद पदों में नाथपंथी साधना का भी प्रभाव ग्रहण करती दिखलाई पड़ती हैं। उनकी वीरा उत्कटता सूफियों के समान है। वे किसी मतवाद पर आक्रमण नहीं करती, यह अनाक्रमण धार्मिक कवियों में बहुत कम है। सुनने में चाहे जैसा लगे, लेकिन सच यह है कि मध्यकालीन धर्म साधक कवि अपने मत का प्रचार और विरोधी मत या मतों पर प्रहार करने में ढील या लिहाज नहीं बरतते। इन दोनों बातों से इस अनुमान को पर्याप्त आधार मिल जाता है कि मीराबाई किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थी। दीक्षित रही भी हों तो इस विषय में वह संकीर्ण बिल्कुल नहीं थी। वह घर की चार दीवारी तोड़कर बाहर निकली थी तो किसी प्रकार की संकीर्णता में बंधना उनके लिए स्वाभाविक भी नहीं था। युग विशिष्ट से अनुभूति की अभिव्यक्ति किसी प्रचलित प्रवृत्ति का सहारा लेती है। यह प्रवृत्ति किसी साहित्येतर आंदोलन पर आधारित हो सकती है या किसी शुद्ध साहित्यिक प्रवृत्ति पर। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और उनके अनेक भक्ति पूर्व आंदोलन इसी प्रकार अभिव्यक्ति के आधार बने। रीतिवाद शुद्ध साहित्यिक प्रवृत्ति थी, वह भी अभिव्यक्ति को सहारा देती रही। ऐसा लगता है कि मीरा के यहाँ जो विभिन्न मतों का प्रभाव दिखलाई पड़ता है वह अभिव्यक्ति का सहारा या माध्यम मात्र बनकर आया है। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी की कविताओं में उनके धार्मिक मत का प्रचार प्रमुख उद्देश्य है। मीरा की रचनाओं में धार्मिक मतवादों की यह भूमिका नहीं, वह धार्मिकता को अनुभूति अभिव्यक्ति का सहारा भर बनाती है। वह चाहे जिस मतवाद का सहारा ले, प्रमुखता वीरा या संयोग की ही होती है। इस दृष्टि से उन्हें भक्तिकालीन रचनाकारों में विशिष्ट माना जाना चाहिए। आधुनिक युग में भी महिला लेखिकाएं प्रायः किसी वाद के चक्कर में नहीं पड़ती। वह विभिन्न आंदोलनों या प्रवृत्तियों को स्वीकार किए बिना तो रचना नहीं कर सकती, किंतु उनके यहाँ इन वादों या प्रवृत्तियों का सत्याग्रह या दुराग्रह नहीं होता। सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, सभी के यहाँ यह बात लागू होती है। स्नेहमयी चौधरी की कविताओं में नई कविता का रीतिवाद कहीं कहीं तो मिल जाएगा, किंतु आग्रह प्रवृत्ति पर नहीं अनुभूति पर मिलेगा। रीतिवाद से इसीलिए इन महिला रचनाकारों के रचनाओंकारों को रचनाएं अपेक्षाकृत मुख्य हैं।